मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, AFEIS के आज 16 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे वेटलैंड इकोसिस्टम यानी कि आर्द्र भूमि परितंत्र, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। सोमवार है, सोमवार को हम लोग कोविड के बारे में कुछ बातें करते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा और आप लगातार इसके संपर्क में है ही, लगातार हमारी स्थिति जो है ना वो बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यूरोप की स्थिति खराब होती चली जा रही है, दिल्ली में भी स्थिति बेहतर नहीं है, खराब ही होती चली जा रही है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के स्थितियां नियंत्रण में हैं। आप देख रहे हैं कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर के काफी अच्छी हो गई है, 93.09% हो गई है। कुल टेस्टिंग में जो अब लोग मिल रहे हैं जो संक्रमित हैं, उनका भी जो अनुपात है गिर करके 5.44 हो गया है, जो काफी कम है। और मृत्यु दर भी जो पहले बहुत समय तक 1.5 पर टिकी हुई थी, अब 1.47 पर आ गई है। ये कुछ आंकड़े मैंने सामान्य तौर पर आपकी जानकारी के लिए बताए हैं। रेडियो न्यूज में आपने बड़े विस्तार के साथ सुना है कि बंगाल के जो एक प्रख्यात अभिनेता थे सौमित्र चटर्जी, वे नहीं रहे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें बकायदे सम्मानित किया गया था और हमारे यहाँ के जो बहुत ही महान फिल्मकार हैं सत्यजीत रे रहे हैं, उनकी कई फिल्मों में सौमित्र चटर्जी जी ने काम किया था। देखिए, यहां पर आपको मैं थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूंगा, है ना। फिल्मी जगत के बहुत से इस तरह के कलाकार हमें बीच बीच में छोड़कर जाते रहते हैं। आपके लिए अब चैलेंज यह है कि किस पर आप विशेष ध्यान देंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां मैंने सौमित्र चटर्जी जी की बात कही। ये बात मैंने क्यों कही, है ना, ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूज सुन रहे थे तो आपने देखा कि न्यूज में काफी समय इनको दिया गया। इसका मतलब है कि इनका जो व्यक्तित्व है वो राष्ट्रीय व्यक्तित्व है और एक बड़ा व्यक्तित्व है, पहली बात तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा यह कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप जानते हैं कि फिल्म जगत में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी ही चाहिए, और वैसे भी जो साहित्य कला संस्कृति है आपके सिलेबस में बाकायदे है। कभी कभी होता यह कि हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में इन पर कुछ भी ना पूछा जाए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, दूसरे स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह की जानकारियां जब आपके दिमाग में होती हैं तो मेन एग्जामिनेशन में जब आप अपना उत्तर लिख रहे होते हैं तो इस तरह के जो तथ्य हैं आपकी मदद करते हैं, इसलिए भी इस तरह की जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। लेकिन सिलेक्शन का पैमाना क्या हो, ये इसे जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कितने तथ्य अपने पास संजो कर भला रख सकेंगे। फ्रेंड्स, एक खबर है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, बनेंगे, शपथ लेंगे और सातवीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी है। आज के गूगल न्यूज में भी है और अखबारों में भी एक बात छपी है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा तथ्य है जो बहुत से प्रश्नों के उत्तर लिखने में आपकी मदद कर सकता है, और वह यह है कि विश्व बैंक ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। याद रखिए, विश्व बैंक ने जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है ICP, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम। हालांकि कार्यक्रम दिया हुआ है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम, ये 2017 के तहत ये जारी की गई है, मतलब इसमें जो सर्वे किया गया है, जो आंकड़े लिए गए हैं वो 2017 तक के लिए गए हैं। 176 देशों के आंकड़े लिए गए हैं और उसके आधार पर विश्व बैंक ने जो घोषणा की है वो ये है कि किसी भी देश की जो GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है, जिसे आय कह लीजिए, जो राष्ट्रीय आय होती है, वह उस देश की खुशी का पैमाना नहीं होता है, ये इन्होंने रिपोर्ट में कहा है। हालांकि विश्व बैंक ये जो बात कह रहा है, ऐसा नहीं कि ये बात पहली बार कही जा रही है, इससे पहले भी कई संस्थाओं ने ये बात कही है। और आपको मालूम है कि भूटान वगैरह ने तो इसको जीडीपी को के पैमाने को नकारते हुए बकायदे खुशहाली इंडेक्स जारी करना शुरू कर दिया था। तो लगातार इस पर बात कही जा रही है, लेकिन अभी जो विश्व बैंक ने जारी किया है तो एक रेफरेंस के संदर्भ में ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि केवल धन अर्जन ही खुशहाली का आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ अच्छे आंकड़े दिए हैं इस रिपोर्ट में। जैसे एक आंकड़ा यह है कि दुनिया के 70 देश 176 कंट्रीज में से 70 कंट्रीज ऐसे हैं जो उच्च आय श्रेणी में आते हैं, जिनकी इनकम काफी अधिक है, अच्छी है। खासकर भारत चूंकि दक्षिण एशिया में है तो आप एक ये आंकड़ा विशेष रूप से अपने दिमाग में रख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में दुनिया की 23.9% पॉपुलेशन रहती है, यानी कि 24% पॉपुलेशन आप मोटे तौर पर कह सकते हैं, 24% पॉपुलेशन रहती है। लेकिन जब हम वर्ल्ड के जीडीपी का देखते हैं तो उसमें साउथ एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 8.5% है। देखिए पॉपुलेशन है नियर अबाउट 24%, लेकिन हम कमा कितना रहे हैं 8.5%। तो आपको ये जो अंतर है क्या इस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है कि वाकई में जो दक्षिण एशिया के देश हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं? तो मुझे लगता है कि यह एक आंकड़ा भी आपके काम का हो सकता है। फ्रेंड्स आइए अब आज के मुख्य विषय पर हम आते हैं। मैंने इस मुख्य विषय का चयन इसलिए किया है कि भारत के दो स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल, ये जो दो स्थान हैं, ये दो स्थान सुन लीजिए कौन कौन से हैं, चूंकि लेटेस्ट हैं तो आपको मालूम होने चाहिए। एक है उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर झील है सूर सरोवर झील, जिसे कीथम झील भी कहते हैं, कीथल। ये बेसिकली सूर सरोवर पक्षी विहार के नाम से पॉपुलर है। तो आप कह सकते हैं कि इसका नाम है सूर सरोवर पक्षी विहार, एक है। और दूसरा है महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, यह महाराष्ट्र के बुलढाणा में है। और इसके बारे में एक जो विशेष तथ्य है आपके दिमाग में जो होनी चाहिए वो ये है कि यह लगभग 50,000 साल पुरानी झील है। और इस झील की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये एक उल्का पिंड धरती से जब टकराया था तो उससे यह झील बनी है। और यह देश की एकमात्र ऐसी झील है जो उल्का पिंड के कारण बनी है। ये दो स्थान आपको आपकी जानकारी में होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, महाराष्ट्र का लोनार झील और उत्तर प्रदेश का सूर सरोवर पक्षी विहार। दोस्तों ये जो रामसर जो स्थल घोषित किए जाते हैं इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, जो आर्द्र भूमियां होती हैं जिन्हें आप वेटलैंड कहते हैं, उस हमारे जो पारिस्थितिकीय तंत्र है उसकी दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है। तो खासकर एक स्थान है रामसर, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, ये ईरान में एक जगह है रामसर, 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, 1971-72 में एक कन्वेंशन हुआ था। और उसमें ये बात कही गई कि विश्व के जो बहुत अच्छे इस तरह के स्थल हैं जिनका संबंध पारिस्थितिकीय तंत्र से है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की जाए ताकि उनका अच्छे तरीके से उनका संरक्षण किया जाए। तो उन्हें हम फिर कहते हैं रामसर स्थल, चूंकि ये सम्मेलन रामसर में हुआ था तो उन्हें रामसर स्थल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर सीधे सीधे, जिसे मैंने आर्द्र भूमि परितंत्र वेटलैंड इकोसिस्टम कहा है। ये जो टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी आपके पास बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अभी देखिए जो प्री एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिनमें वो बारीकी से जाते हैं। बारीकी से जाने का मतलब है अगर आर्द्र भूमि परितंत्र के बारे में हम बात करें तो सिंपल सा अर्थ निकलता है कि एक ऐसी भूमि जिसमें आर्द्रता बनी रहती है, जिसमें नमी बनी रहती है, जैसे कि दलदल को आप कह लें तो वहां बकायदे नमी बनी हुई है तो आप कह सकते हैं कि ये आर्द्र भूमि है। वो तो हमारे सामान्य ज्ञान में है, लेकिन पारिभाषिक रूप में क्या है? वास्तव में जो आर्द्र भूमि की जो परिभाषा बताई गई है वो क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जो ज्वार के क्षेत्र होते, लो टाइड, निम्न ज्वार कह लीजिए कि क्षेत्र होते हैं, उसको भी आर्द्र भूमि परितंत्र में शामिल किया गया है? परितंत्र को छोड़ देते, आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है, और इसके बाद नीचे उनके ऑप्शंस दे दिए गए। तो जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उस परिभाषा में आपको मिलेगा कि समुद्र के वे स्थान जहां निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से जो पानी की गहराई है वो अधिक नहीं होती, आर्द्र भूमि कहलाती है। इसका मतलब है कि यह भी आर्द्र भूमि है। अब आर्द्र भूमि में किन किन बातों को शामिल किया जाता है? मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताइए कि जो धान के खेत होते हैं आप उसे क्या कहेंगे? जो नहर है, जो बांध है, जहां मछली पालन किया जा रहा है, क्या आप उन्हें आर्द्र भूमि कहेंगे? जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, क्या आप उन्हें आर्द्र भूमि कहेंगे? अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है या पढ़ भी लिया है तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। यह बहुत ही सामान्य किस्म के प्रश्न हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनमें थोड़ी सी बारीकी की जांच की जाती है कि आप उनके बारे में कितनी बारीकी के साथ समझ रखते हैं। दोस्तों, ये एक नया ट्रेंड पिछले कुछ सालों से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के, खासकर प्री एग्जामिनेशन में उभरता दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहां मैं आप सबको विशेष रूप से सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप इस तरह के बहुत ही सामान्य किस्म के टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत ही सामान्य किस्म से इसे न पढ़ें। होता यह कि एक बार नजर मार ली, ठीक है ये आर्द्र भूमि है ना, जहां पानी रहता है, जो दलदली भूमि है वो आर्द्र भूमि है, ठीक है खत्म हो गई बात। नहीं, आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, मूलभूत बातों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। एक बार पढ़ लेने के बाद मन ही मन उन्हें दोहराएं, और मन ही मन दोहराने के बाद फिर से आप उसे पढ़ें कि कहीं जो आपने दोहराया था उसमें कोई बात छूट तो नहीं गई है। और जब दोनों मैच कर जाता है, यानी कि लिखी हुई बातें जो आप पढ़ रहे हैं और सोची हुई बातें जो आप मन ही मन दोहरा रहे हैं, जब वो मैच कर जाती हैं, इसका मतलब है कि अब इस टॉपिक पर आपकी ठीक ठाक तैयारी हो गई है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। सजल कुमार गुजरात से, सजल कुमार ने एक बहुत अच्छी खबर दी है, और उन्होंने लिखा है कि 2017 में उनके दो दोस्त थे जिनका जो मीडियम था वो गुजराती था, और इंटरव्यू उन्होंने हिंदी में दिया था, और दोनों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए। उनमें एक थे मिहिर पटेल जिनको 23rd रैंक मिली, और जो दूसरे थे वो थे अनिल धामेलिया जिनको 27th रैंक मिली। मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सूचित किया है कि ये दोनों के दोनों गुजराती मीडियम के स्टूडेंट थे। सेजुल, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य मित्रों के नाम हैं ऋषभ सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र कुमार, जय लक्ष्मी जपति और आकांक्षा सचान बेंगलुरु से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।